इस्लाम में जो इंटरेस्ट का जो मॉडल और पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो किस फंडामेंटल्स के ऊपर है, उसकी बेसिस क्या है, वो किस पिलर्स के ऊपर वो पूरी इमारत हमारी इंटरेस्ट की जो है ना खड़ी है। दूसरा इसमें एक और चीज है, एक चीज है इंटरेस्ट, दूसरी है हार्डशिप एंड एक्सप्लॉयटेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल ऐड करूंगा, अगर मैं आज लाहौर में बैठा हूं और मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है और मेरे फॉर एग्जाम्पल पैसे इस्लामाबाद से ही आ रहे हैं और वो एक दो दिन की ट्रैवलिंग है उसमें, तो मुझे पैसों की कमी नहीं है, तो अगर मैं किसी अपने करीबी दोस्त से वो फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज में ले लेता हूँ और जैसे ही मुझे 2 दिन बाद पैसे आते हैं और मैं उसको 2000 वापस कर देता हूँ, तो इस तनाजुर में वहां पे मेरी एक्सप्लॉयटेशन या जो इंटरेस्ट की जो इमारत और प्रिंसिपल है इस्लाम में उसकी क्या एप्लीकेशन होगी?
यानी इंटरेस्ट की बुनियाद क्या है और फिर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, आप
टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज सेपरेट थिंग, आई एम आस्किंग अबाउट हार्डशिप एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ समवन।
ठीक,
अगर उसमें किसी की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो फिर क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट।
पहली बात तो मैं आपसे अर्ज करूं कि सारी दुनिया के मामलात सूद या इंटरेस्ट से निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में मईशत से मुतल्लिक एक बुनियादी उसूल बयान हुआ है और वो कुरान मजीद में बयान हुआ है, वो ये है कि ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, यानी तुम एक दूसरे का माल किसी बातिल तरीके से ना खाओ। चुनाचे हर वो चीज़ जो जुल्म के जरिए से हासिल होती है, इस्तेसाल के जरिए से हासिल होती है, उससे हर मुसलमान को बचना चाहिए। इंटरेस्ट या सूद उनमें से एक बहुत छोटी सी चीज़ है।
बिल्कुल,
यानी इस्तेसाल की बात, ऐसी सूरतें हैं जो इससे कहीं बड़ी हैं और वो मौजूद है दुनिया में, हम उसका इर्तकाब करते हैं। तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि इंटरेस्ट कोई प्रिंसिपल नहीं है, उसूल नहीं है, बल्कि एक उसूल का इतलाक है। वो उसूल है ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, यानी हमें कोई भी ऐसा तरीका दूसरे का माल खाने का इख्तियार नहीं करना चाहिए जो बातिल पर मबनी हो, जो नाहक पर मबनी हो, जिसको इंसानी फितरत कबूल न करती हो, जिससे इंसानी अकल इबा करती हो। वो खा मिलावट है, वो खा गबन है, वो किसी का माल लूटना है, वो किसी को धोखा देना है, वो फरेब देना है, वो किसी और तरीके से इस्तेसाल करना है, वो जुल्म के साथ किसी का माल छीनना है, ये सारी चीज़ें अल्लाह के दीन में ममनू करार दी गई हैं। इनमें से एक चीज़ ये भी है कि आप कर्ज पर मनफत का मुतालबा करें, यानी किसी को उसकी ज़रूरत के लिए कर्ज दें, खा वो ज़रूरत कारोबारी है या ज़ाती ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए कर्ज दें, इसलिए कि ज़ाहिर है ज़रूरतमंदी आपके पास कर्ज मांगने के लिए आता है। इस्लामी अखलाकियात में ये बात हमें समझाई गई है कि अगर आपके पास कुछ जायद मौजूद है तो आप अपने भाई की वैसे ही मदद कर दें, लेकिन अगर आप कर्ज के तौर पर देना चाहते हैं तो अपनी असल रकम से जायद मुतालबा न करें। ये कर्ज की अखलाकियात है, और अगर आप जायद रकम का मुतालबा करेंगे तो ये रिबा है या सूद है। सादा तारीफ है इसकी, कर्ज पर मनफत का मुतालबा करना, इसको ममनू करार दिया गया है। ये उस उसूल की एप्लीकेशन है कि ये भी किसी का माल बातिल तरीके से लेना है, नाजायज तरीके से माल लेना है। तो इस वजह से सही तनाजुर में अगर आप देखेंगे तो सूरत हाल ये है। तो कर्ज पर मनफत का मुतालबा करने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन किसी से आप कर्ज लेते हैं और अपने शौक से, अपनी खुशी से, बेहतर तरीके से वापस कर देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर ऊँट लिया था और वापस किया तो ये कहा कि भाई उससे बहुत बेहतर ऊँट वापस कर देना, अपनी खुशी से जायद दे देना ये रिबा नहीं है। मुतालबा करना और मुतालबे की बुनियाद पर किसी से तकाजा करना, इसको सूद कहा जाता है।
अच्छा, इसी कोई थोड़ी अगर एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता हूँ। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सिर्फ एक्सचेंज के पर्पस के लिए ही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे इलाके या गांव में रह रहा हूँ जहाँ पे सारे एक वेल्दी पर्सन्स की एक सोसाइटी है, ओवरऑल एवरीबॉडी इज वेरी वेरी वेल्दी, वहाँ पे किसी को किसी किस्म की हार्डशिप की सामना नहीं है, तो वहाँ पे अगर ये सिनेरियो सारा चल रहा है, अगर वो दे भी रहे हैं, नवाज भी रहे हैं उसी के बदले में, तो फिर वहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे? मतलब मेरे पास इल्म है कि नहीं किसी का इस्तेहसाल करना, इस्लामी प्रिंसिपल्स हैं कि किसी की कर्ज से ज्यादा आपने नहीं डिमांड करनी, तो फिर वहां उस सोसाइटी में मैं फिर कैसे मतलब कि इस चीज को देखूंगा?
अगर वाकई ऐसी कोई सोसाइटी वजूद में आ गई है जिसमें किसी को जरूरत ही नहीं है तो कर्ज लेने कौन आएगा आपके पास?
नहीं, वहां
कर्ज तो मांगा ही उस वक्त जाता है जब आपको कोई जाती या कारोबारी जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है तो हार्डशिप ही होती है। तो इस वजह से पहले या तो उस बुनियादी मुकदमे को खत्म कर दें, वरना जहां कहीं जरूरत होगी वहां कर्ज मांगा जाएगा। जब जरूरतमंद को आप कर्ज देंगे तो आपको मनफत का मुतालबा नहीं करना चाहिए।
सूद से रिलेटेड सवाल था, जो जनरली अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब एसेट बेस्ड ट्रांजेक्शन हो जाती है, जिसका आपने हायर परचेज का एग्जाम्पल भी दी, वो तो ठीक है, बट हम आज हम जिस डिनोमिनेशन में ट्रेड कर रहे हैं या डील कर रहे हैं वो खुद भी एसेट बेस्ड नहीं है। जो हमारा करेंसी नोट है और जो करेंसी है ये एक प्रॉमिसरी नोट है विच इज़ नॉट रियली बैक्ड बाय एसेट। सो इस तनाजुर में अगर हम सूद की और इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट और सूद को जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, सो क्या वो उसके फंडामेंटल्स किस तरह से चेंज होते हैं? बिकॉज ये
इन्फ्लेशन के मामला कर्ज में एडजस्ट किए जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये आप इन्फरादी सतह पर भी तय कर सकते हैं या आप कौमी सतह पर भी तय कर सकते हैं। मैं तो अरसे से ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि आप किसी को कर्ज देते हैं तो करेंसी की हकीकी वैल्यू के लिहाज से माहिदा कर लीजिए और वो इसी लिहाज से आपको वापस कर देगा, क्योंकि ये हमें मालूम है कि बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ों की कीमतों में तब्दीलियाँ हो रही हैं। अच्छा, रियासत की सतह पर भी आप ये काम करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ खिलाफ शरीयत नहीं है। हम जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी तब्दीलियाँ किस तरीके से आ रही हैं। कदीम ज़माने में बाज़ अवक़ात 400 साल में कीमतें एक ही जगह खड़ी होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो इस हकीकत वाकया के मुताबिक अपने मामलात को भी दुरुस्त कर लेना चाहिए, इसमें कोई हरज की बात नहीं। मैं लिख कर ये बात कर चुका हूँ और मेरे नज़दीक ये इन्फिरादी मामलात में भी बिल्कुल जायज़ है, ये इज्तिमाई मामलात में भी बिल्कुल जायज़ है।
सर, इसमें रेफरेंस पे हम गोल्ड को बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि हम कदर तय कर लें तो गोल्ड को
कई चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए, इसका ताल्लुक भी हालात से है। अगर आपके ख्याल में सोने को आज भी ये हैसियत हासिल है तो उसे बना दीजिए,
ठीक।
एक ज़माने में पेट्रोलियम की मसनूआत को ये हैसियत हासिल हो गई थी, आप उनको बना सकते हैं। अच्छा, एक तरीका जो है माहरीन मईशत तजवीज़ करते हैं वो ये कि आप एक माशी बास्केट बना देते हैं और उसकी बुनियाद पर इन्फ्लेशन को तय कर देते हैं। जो भी कायदा बना लें उसके मुताबिक आप तय करें और उससे अपने तमाम कर्जों को वाबस्ता कर दें, इसमें इस्लाम को मजहब को मेरे नज़दीक कोई एतराज़ नहीं।
लेकिन ये जो इन्फ्लेशन का बुनियादी वजह है वो आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी की वजह से पैदा होती है। अगर आपकी ट्रेडिंग ही रियल एसेट्स में हो रही है, सेटलमेंट एटलीस्ट रियल एसेट्स में हो रही है, तो फिर ये इन्फ्लेशन का मामला जो है ये गैर इररेलेवेंट हो जाता है।
खुदा करे ऐसा हो जाए, जब तक नहीं होता उस वक्त तक तो जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ही राय देनी पड़ेगी। यानी ये बात कि दुनिया का निज़ाम तब्दील हो जाए, उसके अंदर हुकूमतें जिस तरह से मामलात करती हैं उनमें तब्दीली आ जाए, दुनिया के मजमूई माशी नज़म को किसी और उसूल पर उस्तवार कर दिया जाए, बहुत अच्छी बात है, आप भी जद्दोजहद कीजिए, हम भी करेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं होता
तब तक
उस सूरत हाल यही।